हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रानी कादंबरी ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम महाराज को होश में ला सकती हो लड़की? रानी की बात का जवाब देते हुए शिवानी ने कहा, मैं कोशिश करके देख सकती हूँ, क्योंकि मैं उन जख्मों को ठीक कर सकती हूँ जो भी ऐसे काली शक्तियों की वजह से आए हो। मैंने आश्रम में रहकर ये शक्तियाँ हासिल की हैं। हाँ ठीक है, जो भी हो, लेकिन अगर तुम मदद कर सकती हो तो फिर करो जो करना है, लेकिन महाराज को कुछ होना नहीं चाहिए और उन्हें होश आ जाना चाहिए। रानी ने एक तरह से थोड़ा धमकी भरे अंदाज में कहा, लेकिन शिवानी ने उनकी बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप से आगे आई और उसने आगे जाकर राजा के माथे पर अपना हाथ रखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने मन में कोई मंत्र दोहरा रही है और बाकी सारे लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। इसी बीच चंद्रिका थोड़ी हिम्मत करके आगे आई और रानी के बगल में आकर खड़े होते हुए उसने कहा, रानी माँ, राजकुमारी वसुंधरा, आप उन्हें किसी को ढूंढने के लिए क्यों नहीं भेजती? कहाँ गई है वो? क्या आपको उनकी फ़िक्र नहीं हो रही? चंद्रिका की ये बात सुनकर रानी ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, जब तक तुम सुरक्षित हो हमें किसी और की फ़िक्र क्यों होगी, और अभी इस वक्त हमें सिर्फ महाराज की चिंता है और वसुंधरा, वो? इतना बोलते हुए रानी चुप हो गई। उनकी आंखों में थोड़े से आंसू थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। और उनकी ये बात चंद्रिका को तो समझ नहीं आई, वो बहुत ही ज्यादा उलझन में लग रही थी, लेकिन फिर भी आगे और कुछ नहीं बोल पाई, ना ही रानी से वो कोई और सवाल कर पाई। वीरेश ने भी चंद्रिका और रानी कादंबरी के बीच हुई ये बात सुनी। वो भले ही थोड़ी दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी उसके सुनने देखने की शक्ति सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा है, इसलिए उसे ये बात एकदम साफ सुनाई दी और उसे एकदम ही हैरानी हुई। वीरेश ने एक नज़र उठाकर उस तरफ देखा तो चंद्रिका वहां पर उलझन में खड़ी थी और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव भी साफ नज़र आ रहे थे। उसकी भौहें मुड़ी हुई थी और माथे पर बल भी पड़े हुए थे। वीरेश आगे आकर उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से आगे बढ़ा, ठीक उसी वक्त महाराज के शरीर में कुछ हलचल हुई और उनका चेहरा इधर से उधर हिला। शिवानी ने एक झटके से ही अपना हाथ पीछे कर लिया। उसके ऐसा करने से सब उसकी तरफ ही देखने लगे और शिवानी के हाथ पर एक काला गहरा काला निशान पड़ गया और वो अपना हाथ पकड़कर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। क्या हुआ शिवानी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सक्षम ने एकदम ही शिवानी के पास आते हुए कहा और वो उसका हाथ पकड़ते ही वाला था कि तभी शिवानी ने दूसरा हाथ दिखाते हुए उसे रोक दिया और कहा, नहीं, ये नकारात्मक शक्तियों का असर हुआ है मुझ पर और मेरे हाथ में बहुत ही तेज जलन हो रही है और दर्द भी। तुम इसे मत छुओ, नहीं तो ये तुम पर भी असर करेगा। शिवानी के इस तरह से रोकने पर सक्षम वहां पर ही रुक गया और उसकी फिक्र करते हुए बोला, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ? क्योंकि हमारे शरीर पर भी नकारात्मक शक्तियां बुरा असर छोड़ती हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, माफ कीजिएगा महारानी। इतना बोलते हुए शिवानी अपनी जगह से पीछे हो गई और रानी कादंबरी भी उसे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आखिर वो क्या कहती? वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही थी, लेकिन फिर भी वो राजा को होश में नहीं ला पाई। लेकिन रानी को अब राजा की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है और उन्होंने कहा, तो क्या कोई भी ऐसा नहीं है तुम सब में जो इन्हें ठीक कर पाए? तो कोशिश कर महाराज को ठीक कर दो, हम तुम लोगों को बहुत ही बड़ा इनाम देंगे, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बस महाराज को होश में लेकर आओ। रानी कादंबरी ने बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए ये बात बोली और उन्हें ऐसे परेशान देखकर चंद्रिका आगे आई और समर भी वहां पर आया। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? अभी पिताजी भी बेहोश हैं, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। इतने दिनों में आज पहली बार ही समर ने इतनी समझदारी की बात की तो चंद्रिका और रानी कादंबरी दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि ज्यादातर वो लापरवाही से रहता है या तो फिर किसी भी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन कल से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी होते देखा है उस बात का समर के दिमाग पर भी काफी गहरा असर हुआ है और तब से वो एकदम गंभीर है और उसे समझ आ चुका है कि जिन बातों को लेकर वो घमंड करता है वो सब कुछ भी नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ी शैतानी और दिव्य शक्तियां वहां पर मौजूद है जिनके बारे में अब तक उसे कोई अंदाजा भी नहीं था और इसीलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता था। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, महाराज को होश नहीं आ रहा है बेटा। देखो तुम्हारे पिताजी, मैं बस उनकी सलामती चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। रानी कादंबरी ने समर की बात का जवाब देते हुए कहा। चंद्रिका वहां पर खड़ी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, जबकि रानी माँ को वो भी ऐसी हालत में नहीं देख पा रही है। राजा को बेहोश कर उसे भी उनकी फिक्र है, लेकिन उसे वसुंधरा की भी फिक्र है और बाकी कोई भी वसुंधरा का नाम नहीं ले रहा। कुछ देर के बाद वहां पर महल के दरवाजे से किसी के अंदर उनकी तरफ आने की आहट लगी, तो रक्षक दल के लोगों ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, गुरुजी आप यहाँ? ये आवाज वैभव की थी और उसे शायद गुरुजी के इस वक्त वहां पर होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान लग रहा है। लेकिन उसकी बात सुनकर बाकी सबकी नजर भी उसी तरफ हुई जहां से गुरुजी अपने दो शिष्यों के साथ वहां ताजमहल के अंदर आ रहे थे, और गुरुजी को सारे ही लोग अच्छी तरह से पहचानते थे। उन्हें कोई भी पहरेदार अंदर आने जाने से नहीं रोकता। क्या हुआ है यहाँ पर? एक दिन हमारी अनुपस्थिति में इतना सब खेल खेल गया वो शैतान, लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं और महाराज को भी कुछ नहीं होगा। इतना बोलते हुए महात्मा मणिकनाथ वापस उसी जगह पर आए जहाँ पर राजा सामने बिस्तर पर बेहोश लेटा हुआ है। महात्मा बेहोश राजा की तरफ एकदम गौर से देखने लगे और उनके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव है, और उनकी बात सुनकर सभी को बहुत ही राहत महसूस हुई। रानी, समर और बाकी सारे लोगों ने महात्मा को देखकर उनके आगे हाथ जोड़ा और बहुत ही सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने भी अपना एक हाथ ऊपर उठाकर उन सबको आशीर्वाद देने का इशारा किया, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ नहीं बोले। और फिर आगे आए, उन्होंने राजा के दोनों हाथ उठाकर उसके छाती पर रख दिए और थोड़ा गौर से राजा की तरफ ऊपर से नीचे तक देखने लगे।
फिर गुरु जी ने वीरेश को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाया। वो दोनों इतनी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे जो कि वहां खड़े किसी भी इंसान को समझ आना तो दूर की बात है, सुनाई तक भी नहीं दी। लेकिन वीरेश अपने गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ गया और वो दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया, और गुरुजी उसके एकदम ठीक सामने खड़े हुए, और उन दोनों ने अपने हाथ ऊपर हवा में उठाए और फिर कुछ मंत्र पढ़ा, और फिर एक साथ उन दोनों ने वो हाथ राजा के सिर माथे पर रखा। और राजा के माथे पर जैसे ही गुरुजी ने हाथ रखा, राजा और वीरेश ने दोनों ने एक समय पर ही वो हाथ रख तो तुरंत ही राजा ने अपनी आंखें खोल दी। कहानी जारी रहेगी।